ओम शांति। सेल्फ केयर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्य गुणों की ये श्रृंखला जिसमें हम आत्मा के निजी गुण, आत्मा के दिव्य गुणों के खजाने को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हर एक गुण एक एक हीरे के समान है और एक एक रतन इतना वैल्यूबल है जो हम धारण करके अपने जीवन को वैल्यूबल बनाते हैं। ये जीवन बहुत ही अनमोल है और इस जीवन के जो हमें अनमोल जीवन मिला है, इसमें हम दिव्य गुणों को प्रैक्टिस करके इसे और अनमोल बनाते हैं। जीवन मिला हमें, ये हमारे लिए गिफ्ट है, लेकिन इस गिफ्ट की वैल्यू को बढ़ाना ये हमारे हाथ में है। हमारे जीवन में हम जितने गुणों को प्रैक्टिस करते हैं उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें अपने चिंतन, अपने बोल और अपने कर्म, इस पर हमें ध्यान रखना है। जैसा हमारा चिंतन होता है वैसे ही हम उन में से थॉट चूज करके कर्म में लाते हैं और जैसे हमारे कर्म होते हैं उस आधार से हम अपने संस्कारों का निर्माण करते हैं और इन संस्कारों के आधार से ही हम अपने फिर से नए विचार उत्पन्न करते हैं। तो ये साइक्लिक फॉर्म में हमारा मन, बुद्धि और संस्कार कार्य करता है और अपने मन के अंदर शुद्ध विचारों को चूज करने के लिए हमें अपनी राइट इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मन के अंदर जो विचार आते हैं ना, उसके तीन दरवाजे हैं। मन में विचार आने के तीन दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा है वो है इन्फॉर्मेशंस जो हमें अपने सेंस ऑर्गन से मिलती हैं, अर्थात क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें हमारा फोकस कहाँ होता है, कौन सी चीज़ों को हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशंस जो हमें मिलती है उनके आधार से हमारे विचार चलते हैं। दूसरा है कि हम जिसमें मान्यता रखते हैं, यानी कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जो हम मानते हैं उसके आधार से हमारे विचार चलते हैं। हमारी मान्यता है अगर कि बिना गुस्से के काम नहीं चलता तो गुस्सा विल वर्क फॉर यू ना, क्योंकि हम मानते हैं उसे तो वो मेरे लिए ज़रूर काम करेगा। तो मान्यता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि बिना गुस्से के काम नहीं चलता, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ तब वो मेरे लिए काम करता है कि भाई सच्चाई से नहीं चल सकते या ईमानदारी से चलना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये हमारी मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं को हमने डेवलप किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो चीज़ों को एब्जॉर्ब करके या हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही है उनमें से हमने वो चूज़ किया और वैसी मान्यता डेवलप की है। और तीसरा है उन मान्यताओं, तीसरा जो दरवाज़ा है हमारे मन के अंदर विचार आने का, वो है हमारी पास्ट मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो घटनाएं हमारे जीवन काल में अपनी इस यात्रा के दौरान हुई है, वैसे ही घटनाओं को हम स्मृति में लाकर के प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। जैसे कोई कार ड्राइव करने के लिए गया हो सीखने के लिए और सीखते सीखते ना अगर कहीं पर डैश हो गया और उसके मन के अंदर उसने उस मेमोरी को स्टोर कर लिया कि भाई कार चलाना वेरी डेंजरस, डिफ़िकल्ट है, और वो मेमोरी को स्टोर कर दिया कि वो चलाया था मैंने तब एक्सीडेंट हुआ था, तो जब भी वो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए उसे कहा जाएगा कि ड्राइविंग करना सीखो, तब उसकी वो पास्ट मेमोरी जो है उसके अंदर में अगर पॉप अप होती है और वो कहता है नहीं, इट्स डिफ़िकल्ट, मैं नहीं कर सकता ड्राइव, और वो प्रेजेंट में भी उस करेज के स्टेप को नहीं ले पाता और प्रैक्टिस नहीं कर पाता। तो इस तरह से हमारे मन के अंदर जो है विचार आने के ये तीन दरवाजे, हमारी इन्फॉर्मेशंस, हमारे बिलीफ सिस्टम और हमारी मेमोरीज, इन अगर हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें अपने इन तीनों गेट्स के ऊपर ना विशेष अटेंशन देना होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस प्रकार के विचारों की लेन देन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है वो चेक करें ना। अगर हम सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देके हमें कहाँ से मिल रही है, टेलीविजन्स हैं या हमारे फ्रेंड सर्कल है या सोशल मीडिया है, उसमें से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी क्वालिटी को चेक करें। अगर वो क्वालिटी वेस्ट है या ऑर्डिनरी है या नेगेटिव है तो तो हम कौन से वाले थॉट्स उसमें से चूज करेंगे जिसकी प्रोसेसिंग होगी और हमारे संस्कार निर्माण होंगे। इसीलिए हमें अपनी इस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्वालिटी है उसको हमें ठीक करना है। दूसरा है दरवाज़ा बिलीफ सिस्टम का, जहाँ से हम जैसी मान्यता रखते वैसे ही हमारे विचार चलते हैं। तो हमारी मान्यताएं जो हैं उन मान्यताओं को हमें चैलेंज करना है। अगर ऐसा मानते हैं कि बिना गुस्से के काम नहीं चलता, तो चैलेंज योर बिलीफ। एक दिन का चैलेंज हम अपने आप को दें कि आज सारा दिन मुझे शांति से या प्यार से या खुशी से कार्य करना है और गुस्सा नहीं करना है। तो इस तरह से चैलेंज करके अपने उस बिलीफ को हम चेंज करें। और तीसरा है पास्ट मेमोरीज, जो पास्ट मेमोरीज को हमने हमने होल्ड करके रखा हुआ है और जिस कारण से अगर हम एक हिम्मत का कदम नहीं उठा पाते हैं या जो हमारे लिए बैरियर बन रही है, जो हमारे अंदर बोझ या बर्डन क्रिएट कर रही है, ऐसी मेमोरीज को हम डिलीट करें ना। हमने उसमें से क्या सीखा, उस लर्निंग को लेकर के आगे बढ़े। अगर हम कार ड्राइविंग सीखने गए थे और वहाँ पर अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ था ऐसा जिस कारण से वो एक्सीडेंट हुआ, कि मेरा समय पर ब्रेक लगाना ना लगाना उस कारण से एक्सीडेंट हुआ, या मेरा ध्यान कहीं यहाँ वहाँ गया था इस कारण हुआ, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ, ध्यान रखूँ, तो उससे ओवरकम हो सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी पास्ट मेमोरी से क्या लर्निंग ली, उस लर्निंग को लेकर के प्रेजेंट में उस लर्निंग को यूज़ करके अपने आप को इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है। तो इस तरह से हमारे इंफॉर्मेशंस, हमारी बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करके उसको हम चेंज करेंगे, हमारी पास्ट मेमोरीज में से लर्निंग्स लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, तो हम अपनी जीवन को सहज, सरल और खुशनुमा बना सकेंगे। तो इसी तरह हमारी इंफॉर्मेशंस की क्वालिटी जैसे हम बना रहे हैं, तो उसमें हमें मदद करती हैं इस प्रकार गुणों का चिंतन करके उसको एक्सप्लोर करने में भी। तो हम पिछले दिनों कई सारे गुणों के ऊपर चिंतन कर रहे हैं और आशा रखती हूँ कि आप सभी उस पर अभ्यास भी कर रहे होंगे और उसका बेनिफिट ले रहे होंगे। आज भी हम ऐसे एक विशेष गुण की बात करने जा रहे हैं जो गुण है संतोष का, या कहे कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन। कहते हैं, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष को धन कहा गया है ना, संतोष धन के सामने और सारे धन जो है वो धूल के समान है ना। धन संपत्ति ना सब चीज़ें ना अगर होते हुए भी संतोष नहीं है, तो बाकी सब चीज़ें हमें ना धूल के समान ही लगेंगी। इसलिए संतोष जो गुण है वो बहुत बड़ा गुण है। जैसे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं राजा, एक राजा जैसे बहुत सारे गहने पहनता है और सबसे ऊपर मुकुट होता है उसका, तो ये संतोष का गुण जो है वो गहनों में मुकुट के समान है। तो राजा राजा की स्थिति जो होती है, ऐसी स्थिति संतोष के गुण धारण करने वाले की होती है। संतोषी सदा सुखी रहता है। संतोषी व्यक्ति जो होता है वो राजा के समान होता है। क्यों? क्योंकि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, यानी उसके अंदर में एक अप्राप्ति की कोई भावना अंदर में नहीं रहती ना। सब कुछ होते हुए भी राजा के पास, सब कुछ होते हुए भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो सब चीज़ें उसको खुशी नहीं देती है। लेकिन जिसके जीवन में कुछ नहीं है, तब भी उसके जीवन में संतोष रूपी धन है, तो वो राजा के समान ही माना जाता है। तो संतुष्टता एक ऐसा गुण है जो हमें राजा बनाती है, यानी कि हमें अप्राप्ति का एहसास अंदर में नहीं है, जो है उसमें खुश रहने का ना, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो अनुभव, एक्सपेरिमेंट और अनुभव हमें राजा की जैसी स्थिति का अनुभव कराता है। तो संतुष्टता जो है एक बहुत ही विशेष गुण है, और ये गुण जो है हमें ही नहीं दूसरों को भी उस खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है ना, उसके साथ रह करके सब लोग बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि वो खुद खुश रहता है, इसीलिए वो दूसरों को भी खुश कर सकता है। संतुष्टता का गुण जो है वो दूसरों को का सहयोग प्राप्त कराने में भी हमें मदद करता है, क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट होता है उसके साथ सब लोग काम करना पसंद करते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं। उनको अंदर में ये नहीं रहता है कभी भी फियर किसी भी प्रकार का कि कहीं ये इस बात से रूठ तो नहीं जाएगा, कहीं इसको ये बात बुरी तो नहीं लग जाएगी। तो इस तरह से जब हम बात कर रहे थे संतुष्टता कैसे इंसान को भरपूरता का अनुभव कराती है, जो भरपूर होता है वो संतुष्ट रहता है और जो संतुष्ट रहता है वो भरपूर भी रहता है। अप्राप्ति उसका एहसास नहीं होता है उसको, कितना आपके पास चीज़ें हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मन के अंदर उसका संतोष है। अगर अप्राप्ति का एहसास है तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन अनुभव करेंगे, लेकिन जिसको संतोष है, प्राप्ति का एहसास है और जो प्राप्त है उसकी कदर है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो संतुष्टता का अनुभव करते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट कराते हैं। इसीलिए उनके साथ कार्य करने वाले लोग भी जो है वो खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। दूसरों के अंदर भी वो भरपूरता का अनुभव कराता है, दूसरों को भी वो मोटिवेट करता है। जो संतोषी व्यक्ति होता है वो खुद भी उमंग उत्साह में रहता है और दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाता है। उसका स्वभाव सरल होता है, इसीलिए उसके साथ सभी मिल करके कार्य करना पसंद करते हैं। वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करता रहता है, कंप्लेंट्स नहीं होती है उसके जीवन के अंदर। वो जो प्राप्त है उसका आनंद लेता है और उसमें वो खुश रहता है। और जो व्यक्ति संतुष्टता का गुण अपनाता है वो निरंतर अथक होकर के अपने कार्य में भी आगे बढ़ता रहता है, सफलता भी उसे प्राप्त होती है। उसकी संतुष्टता ही सफलता की सीढ़ी बन जाती है और इसीलिए संतुष्टता हमें सफलता भी प्राप्त कराती है। संतुष्ट रहना का मतलब ये नहीं है कि हाँ जो कुछ है ठीक है ना, और कोई कार्य न करना, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और अंदर में अपने आप को ना खुश रखना, ये चीज़ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति भरपूर अंदर में रहता है और अप्राप्ति का ना इच्छाओं का शिकार नहीं बनता वो, लेकिन अप्राप्ति का एहसास नहीं रखता वो, उस जो प्राप्त है उन संसाधनों को सही रीति से प्रयोग करके उसमें आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन जो व्यक्ति असंतुष्ट होता है वो क्या करता है? असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा कंप्लेंस करता रहता है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है ना, और इतनी सारी अप्राप्तियों की वो लिस्ट बना देता है कि उसको लगता है कि आगे बढ़ना तो बड़ा डिफिकल्ट है, अब क्या होगा, और वो ब्लेम करता रहता है, परिस्थितियों को ब्लेम करता है, लोगों को ब्लेम करता है। और उसके लिए 10 अच्छे काम किए हो वो जल्दी से भूल जाता है। जो असंतुष्ट रहता है वो जल्दी से उन अच्छे कामों को भूल जाता है, 10 बातों को अच्छी भूल गया, लेकिन एक बार ना कोई अच्छी कार्य नहीं किया या सहयोग नहीं किया उसको, तो वहाँ पर वो विचलित होता है और ब्लेम करता रहता है और असंतुष्ट होकर के रूठ जाता है और रूठता है और वातावरण को भी वो खराब करता है। तो इस तरह से उदासी का वातावरण, निराशा का वातावरण बनता है, अप्राप्ति का एहसास बढ़ता जाता है उसके जीवन के अंदर और वो वातावरण को खराब करता रहता है। और इस तरह से असंतुष्ट व्यक्ति के साथ ना लोग रहना भी पसंद नहीं करते हैं, लोग कटते हैं, सोचते हैं उससे दूर ही रहें तो अच्छा है ना, और उसके कारण से उसकी असंतुष्टता और बढ़ती जाती है ना। इसीलिए वो दूसरों की अच्छे कार्य को अप्रिशिएट भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर संतुष्टता नहीं है। उसको उसकी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरों से कि कोई अगर कोई कार्य करता है उसके लिए तो उसकी क्षमता को नहीं समझता, वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता और अप्रिशिएट नहीं करता कि किसी ने आपके लिए कुछ किया है, तो उसके लिए संतुष्ट नहीं होता, लेकिन और एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है और उस सामने वाले की अपेक्षा न होने के कारण से अगर वो अपेक्षा उसकी पूर्ण नहीं होती है तो उसका असंतोष जो है रूठने में, निराशा में, लड़ाई झगड़े में बदल जाता है और इस तरह से दूरियां भी आती है और संबंध भी बिगड़ते हैं। तो संतुष्टता का गुण जो है संबंधों को मधुर करने में भी हमें मदद करता है ना। संतुष्ट व्यक्ति जो है न खुद अपसेट होता, न दूसरों को दूसरे उससे अपसेट होते, न वो दूसरों को कभी अपसेट करता।
खुद भी संतुष्ट रहता और दूसरों को भी संतुष्ट करने की उसके पूर्ण प्रयत्न रहते हैं। इस तरह से उसके जीवन के अंदर निराशा, हताशा उसके आसपास नहीं आती है और उसके जीवन में सदा उमंग, उत्साह बना रहता है। सरल स्वभाव उसका रहता है और खुशनुमा जीवन होने के कारण से वो दूसरों के अंदर त्रुटियों को नहीं देखता है, कमी कमजोरियों को नहीं देखता है। जिसके अंदर असंतुष्टता है वो दूसरों की सिर्फ कमियाँ ही देखता रहता है, कमजोरियाँ ही गिनते रहता है, किसके अंदर क्या कमी है, किसके अंदर क्या, इसने ये किया, इसने ये नहीं किया, इसने ऐसे करना चाहिए, इस प्रकार के बहुत सारे न त्रुटियों को वो देखता रहता है और उन कमियों के कारण से वो असंतुष्ट रहता है। 99 का चक्कर जैसे वो इस तरह से अपने आप को जाल में फंसाता है कि जो प्राप्त है उसका वो सुख नहीं ले पाता है। चाहे संबंधी उसको अच्छे प्राप्त हैं उसका सुख नहीं ले पाता, जो संसाधन प्राप्त है उसे उसका सुख नहीं ले पाता। एक कहानी है छोटी सी जो बताती है कि एक राजा है, उसके महल में एक नौकर था जो बहुत खुश रहता था, बड़ा खुश रहता था। जो भी काम करता था राजा देखता था उसे, वो सफाई कर रहा है और इतना खुश है ना। तो रानी से उसने पूछा कि ये कर्मचारी हमारा इतना खुश कैसे रहता है। तो रानी ने कहा, अगर आपको देखना है ना इसकी खुशी गायब हो जाएगी ना, तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। ये खुश है रहने का कारण कि जो है उसमें संतुष्ट है, इसीलिए वो खुश है। लेकिन जहाँ पर उसके जीवन में असंतुष्टता आएगी उसकी खुशी गायब हो जाएगी। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया उसने, क्या किया, एक पोटली के अंदर ना 99 सोने के सिक्के लेकर उसके घर के दरवाजे के बाहर रख दिए। जब सुबह वो उठा और दरवाजे पर 99 की पोटली देखी, उसने लाकर के सिक्के गिनते गया, सिक्के गिने तो 99 कॉइन्स थे उसके अंदर, सिर्फ 99 थे। तो उसको लगा ये 100 ही होने चाहिए, 99 कैसे हैं। उसने दोबारा गिनती किया, तीसरी बार गिनती किया, तो उसने सोचा कि ऐसे कैसे, ये किसकी रास्ते में गिर गई होंगी, इसमें 99 में 100 कॉइन्स होने चाहिए, एक कॉइन कहीं गिर गया होगा, तो कहाँ से आ सकता है ये। तो इस प्रकार से उसने रास्ते में ढूंढना कोशिश किया, रास्ते भर में कहाँ आसपास में कहाँ गिर गई हो तो वो ढूंढने की कोशिश करने लगा, एक कॉइन कहाँ है, एक कॉइन कहाँ है। उस एक कॉइन को ढूंढने में ना वो परेशान होने लगा और वो परेशानी उस एक कॉइन के चक्कर में ना, जब वो काम कर रहा था महल के अंदर तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, वो अप्राप्ति की उस एक कॉइन की ना कमी जो है उसको खलने लगी थी कि भाई एक कॉइन कम क्यों है, 100 होने चाहिए थे, 99 क्यों है, 100 होने चाहिए थे, 100 में से एक कहाँ चला गया। वो इन्हीं बातों को बार बार अप्राप्ति उसके अंदर में असंतोष का अनुभव करा रही थी और उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई। उसका जो जो गाना, मुस्कुराना और खुशी से काम करना था वो सब कुछ बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में ना कमी का जो एहसास था, अप्राप्ति का जो एहसास था कि भाई एक कम क्यों है। तो इस तरह से जो अपने जीवन में कमी को अनुभव करता है वो खुशी अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि असंतुष्टता है ना उसके जीवन के अंदर, अप्राप्ति को वो एहसास कर रहा है। तो जो प्राप्त है 99 कॉइन्स उसको मिले उसकी खुशी नहीं है, लेकिन एक कॉइन कम है उसकी दुख में वो चला जाता है और इस तरह से वो अपने आप को परेशान करते हैं। ऐसे ही कई बच्चे होते हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं। एक बच्चा हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन एक बार ना जो स्कूल में गए, पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही थी और रिपोर्ट कार्ड्स बांटे जा रहे थे, तो एक मदर को देखा, वो बड़ी नाराज़ हो रही थी, अपने बच्चे को डांट रही थी ना। तो देखा क्यों डांट रही है, तो लगा कि इसका बच्चा फेल हो गया होगा इसलिए डांट रही थी, लेकिन ना पता चला कि वो सेकंड रैंक पर आया है इसलिए उसको डांट रही है ना, कि जो सेकंड रैंक पर भी आया है लेकिन उस परसेंटेज को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, समझते फर्स्ट आना उसी में खुशी है ना। तो अपनी रीति से चलो आकर एफर्ट्स किए, उसका संतोष जो प्राप्त है उसका संतोष और खुशी न अनुभव करके अगर हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो अगर उस बच्चे को समझो प्रेशराइज किया गया है, तुम सेकंड क्यों आए, फर्स्ट आना चाहिए, तो उसके मन में कौन सी भावना डाली कि फर्स्ट आएंगे तो ही खुशी है ना। फर्स्ट आने की मेहनत करने के लिए इंस्पायर करना अलग चीज़ है, लेकिन प्रेशर करके उसको अंदर में ये भावना उत्पन्न करना, कमी की भावना, उसके कारण से वो अप्राप्ति का एहसास बढ़े, उदासी निराशा आए उसके जीवन में, और जो प्राप्त है उसकी आनंद न ले पाए, तो उसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट टाइम और कम हो जाएंगी। तो जो सेकेंड रैंक से थर्ड और थर्ड से ना और भी कम रैंक हो सकती है। तो इस तरह से जो प्राप्त है, हमने मेहनत की और जो प्राप्त है हुआ, उसमें हमें खुश रहना है। लेकिन अगर हमें और अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं तो और क्या एफर्ट्स करने हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। अगर हम उस पर ध्यान देंगे, संतुष्टता के साथ अपने एफर्ट्स करेंगे कि जो एफर्ट्स मैं कर रही हूँ ना, 100% मैं अपना दे रही हूँ, उसमें हमें संतोष होना चाहिए। फिर रिजल्ट्स जो भी आए, लेकिन मैंने अपना 100% दिया, चाहे मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, चाहे मैं अपने करियर को अच्छा बनाना चाहती हूँ, चाहे मैं अपने रिलेशंस को ठीक करना चाहती हूँ, उसके अंदर मैं अपना 100% दे रही हूँ। जब वो करेंगे तो अंदर में संतोष होगा। हम कर नहीं रहे हैं कुछ और प्राप्ति अधिक करना चाहते हैं तो वहाँ पर ना असंतोष ही होगा, क्योंकि टारगेट ये रखा और उसके लिए एफर्ट्स इतने ही किए, तो वहाँ पर जैसा टारगेट रखा है वैसे रिजल्ट्स ना मिलने पर असंतोष और बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें जो टारगेट्स, जिस प्रकार के रिजल्ट्स चाहिए, उतना 100% रिजल्ट लाने के लिए अपने 100% एफर्ट्स भी करने हैं। हम अपने एफर्ट्स पूरे करते हैं तो रिजल्ट्स भी ज़रूर मिलते हैं, नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता। हमें कंटिन्यूस एफर्ट्स अपने करते रहने चाहिए। और किसी भी प्रकार के चैलेंजेस आती हैं लाइफ के अंदर, जो संतोषी व्यक्ति होगा वो ब्लेम नहीं करता है ना। चैलेंजेस आती हैं, हर एक की लाइफ में आती है। कई जो होते हैं असंतुष्ट व्यक्ति, वो अपने ना स्वास्थ्य से भी, अपने आप से भी असंतुष्ट होते हैं, तो कई वही चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे ना, ये दर्द है, वो दर्द है, इस प्रकार से असंतुष्ट होकर के, दुखी होकर के, दुख का वातावरण बनाते हैं। फिर वो दूसरों को भी वही पास्ट की बातें रिपीट करेंगे या अपने दर्द की बातें रिपीट करते रहेंगे। लेकिन संतोषी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, अच्छा बीमारी आई भी तो वो अपने बीमारी से असंतुष्टता का वातावरण नहीं बनाएगा, लेकिन अपने अंदर में उस कर्म फिलोसॉफी को भी ध्यान रखते हुए अंदर में ये कहेगा कि चलो, जैसे कोई कर्जदार होता है, वो कर्जदार का कर्ज चुकतू कर रहे हैं तो खुशी होती है ना कि भाई हम लाइट हो गए, कर्जा चुकतू हो गया। तो इसी तरह से बीमारी भी कोई आती है अगर, या कोई भी प्रॉब्लम्स भी आई, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं। अगर हम ये ध्यान रखें कि हम ये कार्मिक अकाउंट्स चुकतू कर रहे हैं, मेरा कर्जा चुकतू हो रहा है, और उस रीति से भाई मेरी अपने अंदर प्रसन्नता को बनाए रखे, और उस प्रसन्नता के कारण जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से हम अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं, या जो ट्रीटमेंट चल रही है उसको ना स्पीड अप करते हैं, उसको अच्छी रिजल्ट्स हमें प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए संतुष्ट व्यक्ति जो होगा वो इस तरह से अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी जो भी सिचुएशंस है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेगा। जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी के वो खिलौने बना रहा है, मिट्टी के मटके बना रहा है, मटके बनाए उसने रखे बाहर सुखाने के लिए, लेकिन अचानक से बरसात आ गई। अब बरसात आ गई तो वो ना कोसना शुरू कर देता है, दुखी होना शुरू कर, असंतुष्ट होना शुरू कर देता है, अंदर में ये सोच करके असंतोष उत्पन्न करता है कि ये क्या हो गया, बारिश आ गई, प्रकृति को कोसना शुरू कर देता है ना, अब मेरे जो खिलौने हैं या मटके हैं वो सूखेंगे नहीं, मैं बेचूंगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊँगा। तो वो आर्थिक समस्या जो आई उसके सामने, उसके कारण से वो दुखी परेशान होकर के असंतुष्टता का वातावरण में अपने आप को ले जाता है, और इस तरह से वो दुखी हो रहा है अपनी थिंकिंग की वजह से। लेकिन वहीं पर दूसरा जो संतुष्ट व्यक्ति है, जैसे कि उस कुम्हार की पत्नी, वो कहती है कि देखो अभी एक मौसम है, इसके अंदर बरसात भी ज़रूरी थी ना, आप नाहक अपने आप को चिंता में ले जा कर के दुखी कर रहे हैं कि अगर बरसात नहीं होती तो अनाज कैसे पकता, अनाज नहीं पकेगा तो हम खरीद कर लाएंगे और खाएंगे क्या ना, तो इसीलिए बरसात भी ज़रूरी है। तो हम सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, वहाँ पर असंतुष्ट होते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई क्या ज़रूरी है, बस मेरे काम को पूरा नहीं हुआ तो वहां पर अड़चन आई तो असंतुष्ट हो जाते हैं हम, लेकिन बरसात भी जरूरी है। तो जैसे वो समाधान निकालती है कुम्हार की पत्नी कि भाई किसी और काम को करके हम धन अर्जित कर लेंगे, लेकिन बरसात भी तो जरूरी है, वहाँ पॉजिटिव क्या चीज़ है उसको देखा, तो उस पॉजिटिविटी के कारण भी संतुष्टता को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। तो हमें किसी भी सिचुएशन में ब्लेम करने के बजाय उसके पीछे क्या अच्छा है उसको देखना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण जो अगर हमारा होगा तो हम अपने अंदर में असंतुष्टता के बदले संतोष धन को प्राप्त कर अपनी उन्नति के नए मार्ग ढूंढ सकेंगे, और नए मार्ग ढूंढ करके अपनी एफर्ट्स करके हम जो रिजल्ट्स वहाँ पर हमें महसूस हो रहा था कि लॉस हो रहा है, लेकिन हम उसके दूसरे तरीके भी ढूंढ सकते हैं और अपने जीवन में उस बेनिफिट्स ले सकते हैं या कहें प्रॉफिट ले सकते हैं। तो समस्या है लेकिन समाधान पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। समस्याएं मिट जाएंगी ये अगर हमारा ध्यान फोकस हमारा सॉल्यूशंस के ऊपर है। तो कहने का भाव ये है कि हमें किसी भी परिस्थिति के अंदर सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है, और जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वो प्रसन्न भी रहता है ना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक होती है। नहीं तो क्या होगा, संतुष्टता सब कुछ होते हुए भी ना प्रसन्नता नहीं होगी जीवन के अंदर में असंतुष्टता के कारण से। कई लोग होते हैं बहुत कुछ प्राप्त हो गया लेकिन अंदर में सूक्ष्म इच्छाएं होती, वो बाहर तो दिखाते हैं कि हम बड़े सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के कोने के अंदर में ना वो असंतुष्ट रहते हैं ना, मैं ये कर लेती तो अच्छा था, मेरे अंदर ये होना चाहिए था। तो अपने आप से सचमुच में वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें असंतुष्टता की फिर आगे चलकर और सिचुएशंस के अंदर हमें डिफ़िकल्टी का या अप्रसन्नता अप्राप्ति का एहसास कराती है। तो हमें अपनी प्राप्त हुई चीज़ें हैं उनको काउंट करना चाहिए, उसके लिए हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड डेवलप करना होगा कि हमें जो प्राप्त है उसको हम खुशी से ना उसे प्रयोग करें, और उस प्रयोग करके अपने जीवन में आनंद का अनुभव करें, और उस आनंद के साथ जब हम कोई भी काम करेंगे तो हम और उन्नति कर सकेंगे, जो नहीं है उसे भी प्राप्त कर सकेंगे। हम अगर सिर्फ ये देखते रहते कि इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, मेरे पास तो ये नहीं है, कंपैरिजन में आते रहते हैं जब, तब हम दुख का ना कारण बनता है वो कंपैरिजन। तो हमें कंपैरिजन में नहीं आना है, कंपैरिजन जो है और कंप्लेंट्स जो है वो हमें कभी संतुष्टता का अनुभव करने नहीं देती है। लेकिन परमात्मा जो हमारा पिता है वो कंप्लीट ना संपूर्ण गुणों का शक्तियों का सागर है, और वो मेरा पिता है। अब बुद्धि का तार उसके साथ जोड़ कर देखें ना, जो संतुष्ट व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो परमपिता परमात्मा के साथ अपने बुद्धि का तार जोड़ता है कि उसने उससे मुझे क्या प्राप्त हुआ है, उस प्राप्तियों को वो गिनता है, और इसीलिए वो खुश रहता है और उसकी उन्नति होती जाती है। तो हम अपने जीवन के अंदर खुश रह करके औरों को भी खुशी बांट सकते हैं। इच्छाएं जो है वो इंसान को अच्छा बनने नहीं देती है, या कहें इच्छाएं जितनी ज़्यादा होती है उतनी असंतुष्टता बढ़ती जाती है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से इच्छाओं की कोई अंत नहीं होता है। लेकिन संतुष्ट व्यक्ति जो होता है वो इच्छा मात्रम अविद्या भी होता है, और इच्छाएं डिज़ायर्स नहीं, उसके अंदर लक्ष्य होते हैं उसके जीवन में, लेकिन ना अपने आप को असंतुष्ट नहीं करता है, अपनी 100% एफर्ट्स करके उनको प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है, और अपनी उन्नति के साथ दूसरों को भी उन्नति का कारण बनता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन के अंदर इस संतोष रूपी धन को कमाएं, क्योंकि ये धन जो इसके पास है वो सबसे धनवान है संसार के अंदर, और जिसके पास अकिचार धन होते हुए भी अगर संतुष्टता नहीं है तो वो एक गरीब के समान ही है। इसीलिए हमें अगर रिच बनना है तो अंदर में इस संतुष्टता के धन को जमा करना है। तो संतोष रूपी धन को अपने जीवन में ला करके ना सबसे धनवान आप सभी बने, यही शुभकामना आप सभी के लिए, और इस संतुष्टता के धन का अपना सदुपयोग करके औरों को भी धनवान बनाए, यही शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।